पृष्ठ संख्या 61। रूसी क्रांति। रूस में क्रांतिकारी आंदोलन। युद्ध के दौरान रूस में क्रांति हुई। यह क्रांति एक महान ऐतिहासिक घटना थी। रूसी इतिहास के कुछ पहलुओं और घटनाओं, जैसे रूसी औपनिवेशिक साम्राज्य, उसकी राज्य व्यवस्था के निरंकुश स्वरूप, उसकी अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन, जापान के हाथों उसकी पराजय, यूरोप के अंदर खास तौर से बाल्कन राज्यों में चलने वाले झगड़ों में उसकी भूमिका तथा युद्ध में उसके प्रवेश का उल्लेख पहले किया जा चुका है। 19वीं सदी में कई सुधारवादी तथा क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जिनमें रूसी किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति हुई। 1861 में कृषि दासता के उन्मूलन के बावजूद वहां के किसान गरीबी और कष्ट का जीवन व्यतीत कर रहे थे। रूसी सामंत वर्ग तथा बड़े चर्च बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक थे, और दूसरी ओर करोड़ों किसान ऐसे थे जिनके पास अपनी कोई जमीन जायदाद नहीं थी। उद्योगिकीकरण आरंभ होने के साथ उभरने वाला औद्योगिक श्रमिकों का नया वर्ग भी गरीबी और अभाव के बीच जी रहा था। रूस के आम लोग तो उसकी तत्कालीन व्यवस्था के विरुद्ध थे ही, मुख्य वर्ग तथा बुद्धिजीवी लोग भी निरंकुश राज्य व्यवस्था का विरोध करने में एकजुट हो गए थे, और वे भी किसानों की तरह ही क्रांतिकारी आंदोलन की ओर आकृष्ट हुए। 19वीं सदी के अंतिम चरण में रूस में समाजवादी सोशलिस्ट विचार फैलने लगे थे, और उस दौरान कई समाजवादी समूहों का गठन किया गया था। 1898 में विभिन्न समाजवादी गुटों ने मिलकर रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक दल सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन किया। लेनिन के नाम से विख्यात व्लादिमीर इलिच उलियानोव इस दल के वाम पक्ष के नेता थे। 1903 में इस गुट ने दल में बहुमत प्राप्त कर लिया। यह बहुमत दल बोल्शेविक नाम से प्रसिद्ध हुआ, जबकि अल्पमत दल को मेंशेविक कहा जाता था। बोल्शेविकों ने समाजवाद की स्थापना को अपना लक्ष्य बताते हुए यह संकल्प किया कि उनका तत्कालिक कार्य निरंकुश जारशाही को समाप्त करके एक गणतंत्र की स्थापना करना तथा रूसी साम्राज्य के गैर रूसी राष्ट्रीयता वाले लोगों के शोषण को खत्म करके उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार दिलाना है। 8 घंटे का कार्य दिवस आरंभ कराना तथा भूमि के वितरण से संबंधित असमानता को मिटाना और किसानों के सामंती शोषण का उन्मूलन करना भी इस संकल्प के अंग थे, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। 1905 में रूस में एक क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप जार द्वितीय निकोलस को ड्यूमा नामक संसद की स्थापना करने तथा लोगों को कुछ अन्य लोकतांत्रिक अधिकार देने पर विवश होना पड़ा। इस दौर में श्रमिकों के एक नए प्रकार के संगठन का जन्म हुआ था, जिसे सोवियत कहा जाता था। यह हड़तालों का संचालन करने के लिए स्थापित की गई थी और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संस्था थी। आगे चलकर किसानों की सोवियतों का भी गठन किया गया। बाद में सैनिकों की सोवियतें बनाई गई। धीरे धीरे पूरे देश में सोवियतें स्थापित हो गई। बाद में इन सोवियतों ने रूसी क्रांति में एक निर्णायक भूमिका निभाई। फरवरी क्रांति। 1905 की क्रांति रूस से निरंकुशता को नहीं मिटा पाई। ड्यूमा तो अपनी जगह कायम थी, लेकिन रूस में वास्तविक सत्ता जार रूसी सामंतों और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के वर्ग के हाथों में थी। रूस अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए युद्ध में शामिल हुआ था, लेकिन अकुशल तथा भ्रष्ट रूसी सरकार आधुनिक युद्ध को चलाए रखने में असमर्थ रही। इस युद्ध ने रूस की तत्कालीन व्यवस्था का दिवालियापन साबित कर दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप निरंकुश तंत्र का संकट और भी घनीभूत हो गया, और अंत में यही उसके पतन का कारण बना। रूस ने 1.2 करोड़ सैनिकों को लामबंद किया था, लेकिन उन्हें न ठीक साज सामान मिलता था और न रसद पानी। युद्ध में रूसी हताहत और जख्मी हुए। बंदी बनाए गए सैनिकों का पहले वर्णन किया जा चुका है। रूस की कमजोर अर्थव्यवस्था को युद्ध ने और भी जर्जर बना दिया था। कितने बढ़ती हुई अशांति की आग में घी का काम किया। देश के सामने भूखमरी की भयावहता उपस्थित हो गई थी। यहाँ तक कि देश की राजधानी पेट्रोग्रांड, पहले का सेंट पीटर्सबर्ग जो बाद में लेनिन ग्रांड कहलाया और अब फिर सेंट पीटर्सबर्ग कहला रहा है, को 20 लाख की आबादी भी इससे नहीं बची। रोटी की कमी को जाने के कारण उसके खरीदारों की लंबी लंबी कतारें लगने लग गई थी। 1917 के आरंभ से एक के बाद एक कई हड़तालें हुई जिन्होंने अंत में आम हड़ताल का रूप ले लिया। युद्ध और जारशाही समाप्त करने की मांग जोर पकड़ती गई। 12 मार्च को सेना की कई रेजिमेंट हड़ताल में शामिल हो गई। उन्होंने राजनीतिक बंदियों को आज़ाद कर दिया और जारशाही जनदलों और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। शाम होते होते पेट्रोग्रांड विद्रोही श्रमिकों तथा सैनिकों के हाथों में आ चुका था। 12 मार्च 1917 की इन घटनाओं के साथ फरवरी क्रांति संपन्न हुई। इसे यह संज्ञा इसलिए दी गई कि रूस के पुराने पंचांग के अनुसार वह दिन 27 फरवरी था। उस समय जार राजधानी से बाहर था। उसने विद्रोहियों को दबाने और ड्यूमा को भंग कर देने का आदेश जारी किया, लेकिन ड्यूमा ने सत्ता अपने हाथ में लेने का निर्णय किया और 15 मार्च को उसने एक अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी। उसी दिन जार को गद्दी छोड़ने पर विवश किया गया और उसके निरंकुश शासन का अंत हो गया। रूस को कुछ महीने बाद सितंबर में गणतंत्र घोषित कर दिया गया। जारशाही के अंत का पूरी दुनिया ने स्वागत किया, लेकिन जिन समस्याओं के कारण जारशाही का पतन हुआ था उनमें से किसी को भी हल करने में अस्थायी सरकार कामयाब नहीं हो पाई। युद्ध को जारी रखने की नीति कायम रही और भूमि वितरण की समस्या के समाधान के लिए कुछ भी नहीं किया गया। सिर्फ बोल्शेविक दल ही ऐसा था जिसके पास एक अस्पष्ट कार्यक्रम था। पहले बताया जा चुका है कि लेनिन तथा मार्तो इन दो रूसी समाजवादियों ने द्वितीय अंतरराष्ट्र सेकेंड इंटरनेशनल के प्रस्ताव के इस हिस्से का मसविदा तैयार किया था, जिसमें श्रमिकों का इस बात के लिए आह्वान किया गया था कि यदि युद्ध छिड़े तो उससे उत्पन्न संकट का लाभ उठाकर वे उस व्यवस्था को उखाड़ फेंके जो युद्ध लाने के लिए जिम्मेदार थी। बोल्शेविक हमेशा युद्ध का विरोध करते रहे। ड्यूमा में 5 बोल्शेविक सदस्य थे। युद्ध छिड़ा तो उन्होंने उसका विरोध किया, उन्हें गिरफ्तार करके देश निकाला दे दिया गया। जब फरवरी क्रांति हुई उस समय लेनिन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में थे। उन्होंने कहा, यह किसी भी अर्थ में क्रांति की अंतिम विजय नहीं है बल्कि आरंभिक जीत है। उन्होंने घोषणा की कि केवल एक ऐसी श्रमिक सरकार की जनता को शांति, रोटी और पूर्ण स्वतंत्रता दे सकती है जिसका दरोमदार अव्वल तो कृषक आबादी, कृषि मजदूरों और गरीब किसानों के विशाल बहुमत पर हो और दूसरे सभी युद्धरत देशों के क्रांतिकारी श्रमिकों के गठजोड़ पर हो। अक्टूबर क्रांति। फरवरी क्रांति के समय श्रमिकों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की पेट्रोग्रांड सोवियत का गठन किया गया था, जो तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति बन गई थी। अप्रैल 1917 में पेट्रोग्रांड पहुंचने पर लेनिन ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, जनता को शांति चाहिए, जनता को रोटी चाहिए, जनता को जमीन चाहिए, लेकिन वे देते क्या हैं? युद्ध और भूख, रोटी नहीं। उन्होंने भूस्वामियों को भूमि पर कायम रखा है। उन्होंने जनता से अस्पष्ट शब्दों में कहा, अस्थाई सरकार को कोई समर्थन मत दो, सारी सत्ता सोवियतों के हाथों में आनी चाहिए। इस समय अस्थाई सरकार पर एक और भी खतरा आ गया था। जनरल कार्निलो अपनी तानाशाही स्थापित करने के इरादे से विद्रोह कर बैठा था, लेकिन श्रमिक तथा सैनिक क्रांति की रक्षा करने के लिए उठ खड़े हुए और उन्होंने जनरल के मंसूबों को नाकाम कर दिया। इस समय अस्थायी सरकार का प्रधान अलेक्जेंडर केरेंस्की था। उसके विचार उदार तथा लोकतांत्रिक थे, लेकिन रूसी सरकार युद्ध आरंभ होने के समय से ही जिन नीतियों का अनुसरण कर रही थी उनमें कोई परिवर्तन करने में वह विफल रहा और उसने स्वयं को बिल्कुल प्रभावहीन साबित कर दिया। उसे कहीं से कोई समर्थन नहीं मिल रहा था। अक्टूबर में बोल्शेविकों ने विद्रोह की योजनाबद्ध तैयारी की। 25 अक्टूबर को श्रमिकों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। अस्थायी सरकार का तख्ता पलटने के लिए नियोजित विद्रोह इस कांग्रेस के समय ही किया जाने वाला था। पेट्रोग्रांड में 25 अक्टूबर के सवेरे विद्रोह आरंभ हुआ और कुछ ही घंटों में नगर के लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर बोल्शेविकों के नेतृत्व में क्रांतिकारी सैनिक तथा श्रमिक काबिज हो गए। प्रातः 10 बजे रूस के नागरिकों के नाम लेनिन का संदेश प्रसारित किया गया। उसमें कहा गया, अस्थायी सरकार को अपदस्थ कर दिया गया है। लोकतांत्रिक शांति की अविलंब स्थापना, भूस्वामित्व की समाप्ति, उत्पादन पर श्रमिकों के नियंत्रण और सोवियत सत्ता की प्रतिष्ठापना के जिस उद्देश्य से लोगों ने संघर्ष किया है वह उद्देश्य पूरा हो गया है। इस घटना की तिथि पुराने रूसी पंचांग के अनुसार 25 अक्टूबर की थी, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं। वैसे यह घटना वस्तुतः 7 नवंबर को हुई थी। रात के 10:40 पर श्रमिकों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक हुई। लगभग उसी समय अस्थायी सरकार के मुख्यालय विंटर पैलेस पर हमला शुरू हुआ। अगले दिन पुराने पंचांग के अनुसार 26 अक्टूबर को रात के 1:50 पर विंटर पैलेस पर कब्जा कर लिया गया और अस्थायी सरकार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस सरकार का मुखिया केरेंस्की बच गया। रात के 9 बजे सोवियतों की कांग्रेस की दूसरी बैठक आरंभ हुई। जॉन रीड नामक एक अमेरिकी पत्रकार के आंखों देखे विवरण के अनुसार लेनिन खड़ा हुआ तो उसका स्वागत दीर्घ हर्ष ध्वनि के साथ किया गया। हर्ष ध्वनि शांत होने पर उसने सिर्फ इतना कहा, अब हम समाजवादी व्यवस्था की रचना का कार्य करेंगे। जिस नई सरकार ने सत्ता संभाली उसका पहला काम था शांति की घोषणा को स्वीकृति देना, जो रात के 11 बजे दी गई। इसमें सरकार का यह संकल्प व्यक्त किया गया कि वह शांति के लिए बातचीत शुरू करेगी, ऐसी शांति जिसमें किसी देश और उसके किसी भाग पर अन्य देश का कब्जा नहीं होगा और किसी देश को हर जाना नहीं देना पड़ेगा। इस घोषणा में यह भी कहा गया कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के श्रमिक मानवता को युद्ध की विभीषिका तथा दुष्परिणामों से बचाने के अपने कर्तव्य को समझेंगे और अपने निर्णायक त्वरित तथा सतत कार्य द्वारा शांति की स्थापना में तथा साथ ही शोषित श्रमिक समुदायों को समस्त दासता एवं शोषण से मुक्त कराने में हमारी सहायता करेंगे। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, रूस युद्ध से अलग हो गया। हालांकि जर्मनी द्वारा थोपी गई शांति की शर्तों के मुताबिक उसे अपने कई प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा। लेनिन के नेतृत्व वाली इस क्रांतिकारी सरकार ने जो दूसरा कदम उठाया वह था भूमि संबंधी घोषणा को स्वीकृति देना। यह कार्य 27 अक्टूबर 9 नवंबर को रात के 2 बजे किया गया। इस घोषणा ने निजी भू संपत्ति को समाप्त कर दिया और कहा गया कि भूमि संपूर्ण राष्ट्र की संपत्ति है। इसके शीघ्र बाद नई सरकार ने जारशाही द्वारा चीन, ईरान और अफगानिस्तान पर थोपी गई असमान संधियों का एक तरफा त्याग कर दिया। सभी राष्ट्रों की समानता तथा आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा की गई। गृह युद्ध और विदेशी हस्तक्षेप। बोल्शेविक सरकार की स्थापना करने वाले पेट्रोग्रैड के इस विद्रोह के बाद भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के अन्य भागों में भी ऐसे ही सैनिक विद्रोह हुए और फरवरी 1918 तक नई सरकार ने पूरे देश में अपनी सत्ता प्रतिष्ठित कर ली। लेकिन इसके शीघ्र बाद रूस गृह युद्ध में फंस गया। पुरानी व्यवस्था के प्रति वफादार सैनिक जो गोरे रूसी कहलाते थे, क्रांति को मिटाने के लिए संगठित हो गए थे। ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा अन्य मित्र शक्तियां भी रूस को फिर से लड़ाई में घसीटने, उसके संसाधनों का युद्ध के लिए उपयोग करने तथा क्रांति विरोधी शक्तियों को सहायता देने के लिए उसके मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। आखिर गृह युद्ध तथा विदेशी सैनिक हस्तक्षेप 1920 में खत्म हुए। जारशाही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उखड़ने वाला पहला राजवंश था। युद्ध समाप्त होने के पूर्व दो और राजवंशों का पतन हुआ। इनमें से एक तो था जर्मन राजवंश और दूसरा था ऑस्ट्रिया हंगरी का राजवंश। एक चौथे शासक वंश का पतन युद्ध के शीघ्र बाद हुआ, वह था उस्मानिया शाही घराना। अक्टूबर क्रांति का महत्व रूस की हदों तक ही सीमित नहीं रहा था, बल्कि उसके परे बहुत दूर तक इसका प्रभाव पड़ा। सोवियत रूस, बाद में सोवियत समाजवादी गणतांत्रिक संघ, विश्व के आगे के इतिहास में एक प्रमुख प्रभाव केंद्र बनकर उभरा।